आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकज ने खरीफ की 16 फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। रवां माली साल तक किसान क्रेडिट कार्ड कर्जों के लिए 1.5% सूद की मुराती स्कीम को भी तौसी दी गई है। हुकूमत ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रेलवे के मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों के लिए तकरीबन 3,400 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी है। भारत के कसीर पार्टी वफूद आलमी पैमाने पर पाकिस्तान की जेर सरपरस्ती सरहद पार की दहशतगर्दी को बेनकाब करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। इंडोनेशिया, यूनान और दीगर मुल्कों ने दहशतगर्दी के तई भारत की सिफर बर्दाश्त की मुकम्मल हिमायत की है। भारतीय महकमा मौसमियात ने शुमाल मशरकी खित्ते, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में कल के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और भारत ने जुनूबी कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4x400 मीटर मिक्स्ड मुकाबले में तलाई तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने मार्केट सीजन 2025-26 के लिए खरीफ की 14 फसलों के लिए कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP में इजाफे को मंजूरी दी है। आज तीसरे पहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इत्तेलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि किसानों को उनकी फसल की बेहतर कीमतें हासिल हों, मार्केटिंग सीजन 2025 के लिए खरीफ की फसलों की MSP में इजाफा किया है।
CACP की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में MSP अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं हरेक क्रॉप के लिए कॉस्ट प्लस 50% इस चीज का ध्यान रखा गया है।
पिछले साल के मुकाबले में MSP में सबसे ज्यादा इजाफा तिलहन की कीमतों में किया गया है जो 820 रुपये फी क्विंटल होगी। इसके बाद रागी 596 रुपये फी क्विंटल, कपास 579 रुपये फी क्विंटल और तिल के लिए 579 रुपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया। दालों में तुअर की दाल की MSP में 450 रुपये फी क्विंटल जबकि मूंग की दाल में 86 रुपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया। मरकजी काबीना ने माली साल 2025-26 के लिए मौजूदा 1.5% सूद की मुराद के साथ तब्दील शुदा सूद की मुराती स्कीम MISS के जारी रहने को भी मंजूरी दी। हुकूमत ने इसके लिए 15,642 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
4% पर 2,00,000 रुपए तक का किसानों को कैपिटल मिले वो ध्यान रखा गया है इस स्कीम में। 7% नॉमिनल रेट है, उसमें 1.5% सबमेंशन है और 3% है प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। इफेक्टिवली जो निकला है उसमें यह है कि करीब 4% पे किसानों को 2,00,000 रुपए तक का लोन मिलता है। 449 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्कीम में जुड़े हुए हैं।
काबीना ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे के मल्टी ट्रैकिंग के 2 प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों की मजमुई तखमीना लागत 3,399 करोड़ रुपए है और इन्हें साल 2029-30 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा।
इस साल भारतीय रेलवे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कार्गो कैरिंग रेलवे बनी है। 1.6 बिलियन टन्स कार्गो कैरी किया पिछले साल और ये एक डिसाइसिव जंप है और इसका एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। बिकॉज व्हेन यू कंपेयर हाईवे एंड रेलवे, CO2 एमिशंस आर प्रैक्टिकली 95% लेस इन रेलवेज और कंट्री की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में भी इसका बेनिफिट मिलता है। बिकॉज कॉस्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन जो रेलवे और हाईवे को कंपेरिजन करो तो रेलवे की कॉस्ट आधे से कम है।
जनाब वैष्णव ने यह भी बताया कि इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर मोड के मुताबिक कौमी शाहराह 67 पर आंध्र प्रदेश में तकरीबन 3,653 करोड़ रुपए की लागत से 108 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के 4 लेन वाले बिदावी नेल्लोर कॉरिडोर की तामीर को भी मंजूरी दी है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की सिफारती मुहिम के हिस्से के तौर पर जनता दल यूनाइटेड के रुकने पार्लियामेंट संजय झा की क्यादत वाला कुल जमाती पार्लियमानी वफद आज इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचा। पाकिस्तान की सरपरस्ती वाली दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की आलमी मुहिम के तौर पर ये वफद अब तक जापान, जुनूबी कोरिया और सिंगापुर का दौरा कर चुका है। इस दौरान इंडोनेशियाई फरीक ने वाजे किया कि वो दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं और मसाइल के हल के लिए बातचीत में यकीन रखते हैं। ساتھ ہی انہوں نے عدم برداشت کے بھارتی موقف کی حمایت بھی کی۔ وفد نے آسیان کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر کاؤ کم ہارن سے بھی ملاقات کی۔ جناب ہارن نے کہا کہ انہیں پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بارے میں معلومات دی گئیں اور یہ اس طرح کا واقعہ ہے جسے آسیان برداشت نہیں کر سکتا۔ جناب ہارن نے مزید کہا کہ آسیان دہشت گردی کی سبھی شکلوں میں اور سبھی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے۔ ڈی ایم کے رکن پارلیمنٹ کنی موزی کی قیادت والا دوسرا کل جماعتی وفد آج یونان پہنچا، جہاں یونانی وفد نے اس کا استقبال کیا۔ اس موقع پر محترمہ کنی موزی نے بھارت کی حمایت کرنے اور دہشت گردی کی مذمت کرنے پر یونان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی صرف بھارتی سرزمین تک محدود نہیں ہے۔
This is to emphasize and tell the world that India stands as one. When India is being attacked, all political parties stand together because we represent the people of our nation, which are anguished by what has happened in our soil recently. And we thank Greece for standing with us and condemning terrorism.
اس دوران بی جے پی رکن پارلیمنٹ روی شنکر پرساد کی قیادت والے ایک اور کل جماعتی وفد نے آج اٹلی کے روم میں سینٹ کی خارجی امور اور دفاع سے متعلق کمیٹی کی صدر اسٹیفانیا کریکسی سے ملاقات کی۔ اس دوران بی جے پی رکن پارلیمنٹ روی شنکر پرساد نے کہا کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں دہشت گردی پر سرکاری پالیسی کے طور پر عمل کیا جاتا ہے۔
There have been always requests for a dialogue, but Pakistan never adhered to that. Pakistan is a country where terrorism as an instrument of state policy is being practiced. India gave a decisive strike. We only destroyed terrorist hideouts. Large number of terrorists were killed. Proportionate escalatory only against terrorists.
دوسری جانب بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ بجیند پانڈا کی قیادت والے ایک اور وفد کا سعودی عرب میں بھارتی سفیر ڈاکٹر سہیل اعجاز خان نے خیر مقدم کیا۔ وہیں شیو سینا رکن پارلیمنٹ شری کانت شندے کی قیادت والا ایک اور کثیر جماعتی وفد کانگو جمہوریہ کا دورہ مکمل کرنے کے بعد سیئرا لیون کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آسام، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، ساحلی اور اندرونی کرناٹک، کیرلا اور تمل ناڈو میں کل سے شدید ترین بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، اوڈیشہ، تلنگانہ، مغربی بنگال اور سکم میں بھی کل شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ وہیں شمال مشرقی بھارت میں اگلے 7 دن کے دوران گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مغربی راجستھان میں جمعے کے روز تک گرم لو اور دھول بھری آندھی چلنے کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے کہا کہ گجرات میں اگلے 5 دن کے دوران درمیانی درجے کی بارش ہو سکتی ہے، جبکہ ریاست کے ساحلی خطے کے دور دراز کے مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارتی محکمہ موسمیات احمد آباد کے ڈائریکٹر اے کے داس نے کہا کہ جنوبی گجرات اور سوراشٹر کے ضلعوں کے دور دراز کے مقامات پر اگلے 2 دن کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن کے بعد بارش کی شدت میں کمی کا امکان ہے۔ ماہی گیروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ 30 مئی سے 1 جون کے درمیان سمندر میں نہ جائیں۔ اس دوران ریاست کے نوساری، ڈانگ اور والساڑ خطوں میں آج ہلکی بارش ہوئی۔ احمد آباد سے اپرنا کھوٹ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر الفرید۔
دوسری جانب ہفتے بھر تک چلی موسلادھار بارش کے بعد مہاراشٹر کو بارش سے کچھ راحت ملی ہے۔ اگرچہ ریاست کے زیادہ تر حصوں میں بارش میں کمی ہوئی ہے، تاہم کچھ خطوں میں موسلادھار بارش اب بھی جاری ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ناگپور ضلع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل سے سکم، مغربی بنگال، بہار اور اتر پردیش کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وہ 70,000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے، قوم کے نام وقف کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم ریاست میں بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے، نیز افتتاح بھی کریں گے۔ اس موقع پر وہ اجتماع سے خطاب بھی کریں گے۔ بعد میں جناب مودی مغربی بنگال جائیں گے، جہاں وہ علی پور دوار اور کوچ بہار ضلعوں میں سٹی گیس ڈسٹریبیوشن پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اگلے روز جناب مودی بہار کے کرکٹ کے مقام پر 48,520 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور انہیں قوم کے نام وقف کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل راشٹرپتی بھون کے ثقافتی مرکز میں ادبی کانفرنس کا افتتاح کریں گی۔ 2 روزہ اس کانفرنس میں مختلف اجلاس ہوں گے، जिनमें मुशायरे और कवि सम्मेलन, भारत का निस्वानी अदब, अदब में तब्दीली बमुकाबले तब्दीली का अदब और आलमी मंजरनामे में भारतीय अदब की नई सिमतें शामिल हुएं। इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह देवी अहिल्याबाई होलकर के रजमिया के साथ होगा। राष्ट्रपति भवन साहित्य अकेडमी के तावुन से इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। सकाफत और सयाहत के वजीर जोगेंद्र सिंह शेखावत और मुल्क भर से अदब से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात भी इस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद रहेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दहशत गर्दी की कार्रवाइयों से अपने अवाम की हिफाजत करने के भारत के हक को दुनिया भर के ममालिक में तस्लीम किया जा रहा है। नई दिल्ली में इटली के कौमी दिन की तकरीबात में इटली के सिफारतखाने में मुनक़द एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेरहमाना दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत के साथ यकजहती और हिमायत करने पर इटली की सताइश की।
We are thankful, Ambassador, for Italy's solidarity and support to India following the barbaric terror attack in Pahalgam in Jammu and Kashmir. India gave a firm, resolute and measured response by destroying the relevant terror centers and launch pads. India's right to defend its people against acts of terror has also been recognized by countries across the world. We believe that the world will have zero tolerance for terrorism and cross-border terrorism.
अब जब हम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, मुल्क भारतीय सिपाहियों की शुजात को सलाम पेश करता है। मुसलह अफवाज को खिराज अकीदत पेश करने के तौर पर आकाशवाणी न्यूज एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र याफ्ता सूबेदार जोगेंद्र सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने साल 1962 में चीन भारत जंग के दौरान अजीम कुर्बानी दी थी।
के भारत चीन युद्ध के दौरान सूबेदार जोगिंदर सिंह ने नेफा के तवांग सेक्टर में एक पलटन का नेतृत्व किया। ये पलटन बमला अक्ष पर टोंगपिंगला क्षेत्र में एक रिज पर रणनीतिक स्थिति में था। 20 अक्टूबर को सूबेदार सिंह की पलटन ने मैकमोहन रेखा के पार एक चीनी सैन्य निर्माण देखा, जो आने वाले दिनों में होने वाली किसी हमले का संकेत था। 23 अक्टूबर की सुबह चीनियों की तीन टुकड़ियां, जिसमें हर टुकड़ी में 200 सैनिक शामिल थे, उन्होंने तोप और मोर्टार से एक बड़ा हमला किया। संख्या में कम होने के बावजूद भी सूबेदार सिंह की पलटन ने जबरदस्त जवाब देते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाकर उसे पीछे धकेल दिया। हमले में सूबेदार जोगिंदर सिंह की जांग घायल होने के बावजूद वे अपनी पलटन के साथ डटकर खड़े रहे और अपने सैनिकों को प्रेरित करना जारी रखा। जब दुश्मन की ओर से अंतिम और सबसे शक्तिशाली हमला हुआ, तब सूबेदार सिंह के पास गोला बारूद समाप्त हो गया था और कुछ ही बचे थे। तब उन्होंने एक मशीन गन से दुश्मन पर वार कर उसे काफी नुकसान पहुंचाया। जब स्थिति और बिगड़ गई, तो उन्होंने और उनके शेष सैनिकों ने बेनेट से दुश्मन पर हमला किया, जिसमें दुश्मन के कई सैनिक मारे गए। उनके असाधारण साहस, नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सूबेदार जोगिंदर सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
जुनूबी कोरिया के गुमी में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने आज 4x400 मीटर के मिक्स्ड रिले टाइटल का दिफा किया। भारतीय खिलाड़ी रोपल चौधरी, संतोष कुमार, तमला सरन, विशाल टीके और सुब्बा वेंकटासन ने 3:18 और 12 मिलीसेकंड की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने का तमगा जीता। इस तरह से चीन के 3:20 और 52 मिलीसेकंड और श्रीलंका के 3:21 और 95 मिलीसेकंड के मुकाबले भारत की कारकर्दगी बेहतर रही। साल 2023 में सोने और साल 2019 में चांदी के तमगे के बाद भारत का ये तीसरा मिक्स्ड रिले तमगा है। खवातीन के मुकाबलों में रूपल चौधरी ने भी 400 मीटर में चांदी का तमगा 52 सेकंड और 68 मिलीसेकंड में हासिल किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने खरीफ की 16 फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। रवा माली साल तक किसान क्रेडिट कार्ड कर्जों के लिए 1.5% सूद की मुराती स्कीम को भी तौसी दी गई है। हुकूमत ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रेलवे के मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों के लिए तकरीबन 3,400 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी है। भारत के कसीर पार्टी वफूद आलमी पैमाने पर पाकिस्तान की जेर सरपरस्ती सरहद पार की दहशतगर्दी को बेनकाब करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। और भारत ने जुनूबी कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4x400 मीटर मिक्स्ड मुकाबले में तलाई तमगा जीता है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।